जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय यमुना तीरवन चारे जय कुंज बिहारे जय यमुना तीरवन चारे जय कुंज बिहारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारे जय गिरिवर धारे गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारे जय गिरिवर धारे जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय यमुना तीरवन चारे जय कुंज बिहारे जय यमुना तीरवन चारे जय कुंज बिहारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र जी के क्रोध को देखकर सुग्रीव ने वानर सेनाओं को जगह जगह भेज दिया सीता देवी की खोज में। लक्ष्मण वहां गए थे किष्किंधा में और सुग्रीव को कहा कि आपको अभी श्री रामचंद्र के साथ मिलना होगा और अगर आप साबित करोगे कि वास्तव में आप इस कार्य को करना चाहते हो जिसके लिए आपने वचन दिया था तो श्री राम की कृपा प्राप्त होगी आपको। जब सुग्रीव श्री रामचंद्र के पास आए और क्षमा याचना करने लगे तो प्रभु ने उनसे कहा कि देखो सुग्रीव, हर एक व्यक्ति के लिए और विशेष एक राजा के लिए सही समय पर सही कार्य करना उचित होता है। मनुष्य के लिए उद्देश्य अनेक होते हैं, पुरुषार्थ अनेक होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो धार्मिक क्रियाएं करे, उसे चाहिए कि वो आर्थिक विकास के लिए भी कोई समय बिताए, कोई कार्य करे, साथ साथ गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति की भी छूट दी जाती है सीमा के भीतर। तो इन सब चीजों के लिए समय रहता है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि राज गद्दी पे बैठने के बाद ये इंद्रिय तृप्ति का नशा जो है तुम्हें चढ़ गया है और हालांकि तुम वचनबद्ध हो मेरा साथ देने के लिए, फिर भी अपने राजमहल में रह के अपने रानियों के साथ अपने ऐश्वर्य के साथ इतना भोग कर रहे हो कि तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे धार्मिक कर्तव्य क्या हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे वचन का पालन करने का तुम प्रयास करना। सुग्रीव ने अब तक रावण का नाम सुना नहीं था, हालांकि वाली ने रावण से दोस्ती बना ली थी, परंतु सुग्रीव को यह सब पता नहीं था। और सुग्रीव ने अनुमान लगाया था कि रावण का प्रांत दक्षिण में समुद्र के पार होगा, परंतु निश्चित रूप से नहीं पता था। जब जगह जगह से वानर आने लगे, क्योंकि सुग्रीव ने बुलाया था उन सबको, तो सब सुग्रीव के सामने आए और सबको इकट्ठा किया सुग्रीव ने और प्रभु रामचंद्र जी के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि ये है आपकी वानर सेना। तो प्रभु रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आदेश दिया था कि आप इनको आदेश दे दो जगह जगह जाने के लिए। विंद नाम के एक बलवान तेजस्वी वानर से सुग्रीव ने कहा कि पूर्व दिशा में आप जाओ, जहां तक समुद्र का तट है वहां तक चलते जाना और जगह जगह ढूंढना, कोई भी जगह छोड़ना नहीं सीता के लिए, सब जगह ढूंढ निकालना। फिर उन्होंने सुषेण को बुलाया और सुषेण से कहा कि आप इस दिशा में जाना, पश्चिम दिशा में, और आप चलते रहना, प्राग ज्योतिषपुर नाम का गांव आएगा, प्रांत आएगा, उसके आगे और चलना, फिर समुद्र के पार उसके आगे नहीं जाना, क्योंकि फिर किसी को पता नहीं है कि उसके आगे क्या है। और बाकी अन्यों को भी बुलाया उन्होंने और कहा आप उत्तर की दिशा में जाना, उत्तर की दिशा में अनेक प्रांत हैं, पहले तो हिमालय है, उत्तर कुरु है, क्रौंच पर्वत हैं, और ऐसे आगे चलते 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 ऊपर उत्तर दिशा में समुद्र का तट आएगा, उसके आगे कुछ नहीं है, तो वहां तक देख के लौट के आना। और फिर अंगद, हनुमान, महिंद, द्विविध, नील, नल, इन सब से सुग्रीव ने कहा कि आप सब दक्षिण की दिशा में जाना और दक्षिण समुद्र पार करके भोगवती, जो कि रसातल की राजधानी है, वहां से आगे जाते जाते पाताल तक जाना और पितृलोक तक जाना। पितृलोक के बाद नहीं जाना, क्योंकि भूमंडल की समाप्ति यहीं पर होती है और उसके आगे मनुष्यों को अनुमति नहीं है जाने के लिए। तो इस प्रकार से सुग्रीव ने सारे सेनाओं को पृथ्वी के चारों, भूमंडल के चारों दिशाओं में भेज दिया। बाद में जब सारे वानर चले गए थे तो श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को बुलाया और पूछा कि अरे सुग्रीव, तुम्हें भूमंडल की का जो भूगोल है वो इतनी अच्छी तरह से कैसे पता कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सा प्रांत, कौन सा द्वीप कैसे क्या है, समुद्र कौन सा है, कैसे पता आपको? तो सुग्रीव ने जवाब दिया कि वैसे वाली के भय से मैं इधर उधर भटकता रहा, मुझे ये नहीं पता था जब तक कि हनुमान ने मुझे बताया कि ऋषिमुख पर्वत में, मतंग वन में सुरक्षित स्थान है, क्योंकि वाली को श्राप मिला था मतंग ऋषि से। जब हनुमान ने मुझे ये बात बताया तो मैंने भ्रमण करना छोड़ दिया और शांत मन से ऋषिमुख पर्वत में मेरा निवास स्थान बना दिया, लेकिन तब तक मैं सारे भूमंडल में इधर उधर एक सुरक्षित स्थान के लिए खोजता रहा, ढूंढता रहा, इसलिए मुझे सारी जानकारी हो गई। कबंध राक्षस ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को कहा था कि सुग्रीव को सब कुछ मालूम है, किस इलाके में क्या चीज है, कौन सा स्थान कहाँ है, उस सब पता है। तो फिर सुग्रीव ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उधर तीनों दिशाओं में, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में, जितने भी वानर सेना निकल पड़ी थी वो लौट कर आ गई। ऐसा कोई स्थान नहीं था जिसमें उन्होंने प्रयास नहीं किया था सीता देवी को ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं भी सीता देवी मिली नहीं। फिर केवल आशा उनको रही हनुमान और अंगद के ऊपर कि एक ही दिशा रह गई है और वो है दक्षिण की दिशा। अब यहां से निश्चित ही सीता देवी मिल जाएंगी। तीनों अन्य दिशाओं से लोग निराश होकर आए थे। उधर हनुमान, अंगद, जांबवान, मैंद, द्विविद, नल, नील, तार आदि ये सब दक्षिण की ओर चले जा रहे थे। विंध्या पर्वत पार कर दिया, इधर उधर देख रहे थे, कहीं सीता देवी दिखाई नहीं पड़ी। और एक स्थान में आए जहां जंगल में पेड़ों के पत्ते भी नहीं थे, सब कुछ सूख गया था। सारे वानर बहुत प्यासे थे लेकिन कहीं भी उनको जल नहीं मिल रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक गुफा है और गुफे में बहुत अंधकार है। तो उन्होंने सोचा कि चलो, यहाँ कुछ ऐसे लग रहा है कि अंदर कोई जल हो सकता है। तो एक इस बाद एक हाथ सबके पकड़े और साहस करके अंदर धीरे धीरे चले गए। और अंदर जाके देखा तो एक नई दुनिया वहां पर है, बहुत ही ऐश्वर्य और सौंदर्य वहां अंदर था। और वहां एक साध्वी थी, एक महिला। उस महिला से उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और ये स्थान क्या है। तो उसने कहा, महिला ने कहा, इस जगह का नाम है रक्षविली और इस स्थान को बनाया था माया दानव नाम के दानव ने, जो कि बहुत निपुण हैं तरह तरह के शिल्प शास्त्र में। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे, सारे सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, लेकिन यहाँ पर रह के माया दानव की आसक्ति हेमा नाम की एक अप्सरा से हो गई। उस समय इंद्रदेव को गुस्सा आया और अपने वज्र से माया दानव को वहां से भगा दिया और माया दानव चले गए। अब मैं हेमा की एक सहेली हूं और मेरे पिता मेरु मंडल के अधिष्ठाता देव हैं। मैं उनकी पुत्री हूं और मैं यहां पर तपस्या करती हूं, ये मेरा निवास स्थान है। इस स्थान में वैसे कोई नहीं आता है लेकिन आप सब यहां आ गए, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। तो जितने भी वहां कंदमूल, जल आदि सब उत्पन्न था, वो स्वयं प्रभा ने, जो उनका नाम था, सारे वानरों को दे दिया। सारे वानर वहां संतुष्ट हुए और स्वयं प्रभा देवी से पूछा कि हम आपकी सेवा क्या कर सकते हैं। तो स्वयं प्रभा देवी ने उत्तर दिया कि मैं तपस्वी हूं, मैं किसी से कुछ लेती नहीं, न किसी से कोई चीज लेने की आवश्यकता है। हाँ, वास्तव में जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रगति के लिए तत्पर हैं, उनको इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए अपने लिए। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी घटना से अपने लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, केवल भगवान के लिए, भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। हनुमान बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कार्यरत रहते हैं हमेशा, परंतु अपने लिए नहीं, केवल भगवान श्री राम के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो अपने लिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिर हनुमान जी ने स्वयं प्रभा देवी को उनकी समस्या बताई कि हम यहाँ सीता देवी जो कि श्री रामचंद्र की पत्नी हैं उनको ढूंढ रहे हैं और अनेक महीने हो गए अभी हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हमको एक महीने का समय दिया था, एक महीना तो समाप्त होने को आया। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि वैसे जो अंदर आता है वैसे कोई आ नहीं सकता, लेकिन एक बार आ जाए तो वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मेरी योग सिद्धि से मैं आप सबको बाहर स्थानांतरित कर रही हूँ, तो आप लोगों को लेकिन आंखें बंद करनी चाहिए। सारे वानर सेना ने आंखें बंद कर दी और वो बाहर आए। बाहर आए तो आंखें खोली तो देखा कि सब हरा भरा था। अरे अब तो वसंत ऋतु आ गया, ये तो वसंत ऋतु के लक्षण हैं, इतने महीने बीत गए हमें पता ही नहीं चला। अब अवश्य अगर वापस हम सुग्रीव के पास जाएंगे तो सुग्रीव हमें मार ही डालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अंगद ने कहा कि मेरा विचार है कि मैं यहीं पे रहूंगा और मृत्यु तक उपवास करूंगा, क्योंकि सुग्रीव का सामना करूंगा तो वो मेरी हत्या कर डालेगा, इसलिए मैं यहीं रहता हूं। फिर तार ने कहा हाँ ये अच्छा प्रस्ताव है, वैसे ये गुफे के अंदर कोई जा नहीं सकता और जाने के बाद आ नहीं सकता, तो हम लोग एक बार चले गए तो फिर से जाके वहां सुरक्षित अपने जीवन बिताते हैं। तो ऐसे थोड़े और वानर भी सोचने लगे हाँ हाँ हम वापस जाएंगे सुग्रीव को, सीता देवी को लाए बिना तो सुग्रीव तो हमारी हत्या ही कर डालेगा और कितनी बदनामी होगी। सारे वानर बोलेंगे इतने महीने रहे बाहर, सीता देवी को ढूंढ के नहीं आए। तो ऐसे सब लोग चर्चा कर रहे थे, फिर हनुमान बोलने लगे। काफी लंबा भाषण हनुमान ने दिया और कहा कि अंगद तुम राजकुमार हो और एक राजा के लिए जो उचित है उन कार्यों से तुम भले भांति परिचित हो, तो ये सब बातें तुम्हें शोभा नहीं देते। फिर राजनीति के बारे में हनुमान ने काफी कुछ कहा। जब उपदेश ऐसे कुछ काम नहीं कर रहे थे तो हनुमान ने फिर अंतिम जो उपदेश है वो दंड का वो बताया कि देखो अगर तुम यहाँ रहोगे भले तुम गुफा के अंदर रह जाओ, लेकिन तुम क्या सोचते हो लक्ष्मण तुमको ढूंढ नहीं निकालेंगे? लक्ष्मण यहाँ अपने अस्त्र लेके आएंगे, गुफे को तोड़ देंगे और तुम सबको मार डालेंगे। इसलिए इससे अच्छा कि हमें श्री राम की सेवा के लिए अपना सारा समय और अपनी शक्ति देनी चाहिए। ऐसा करेंगे तो प्रभु राम प्रसन्न होंगे, हमारा जीवन सफल होगा। और अंगद वैसे भी तुम राजकुमार हो, तुम इकलौते पुत्र हो वाली के, तुम लौट जाओगे और सुग्रीव से कहोगे कि हम नहीं ढूंढ पाए और देरी हो गई तो अवश्य वो क्षमा करेंगे और आगे चल के तुम ही तो राजा बनने वाले हो किष्किंधा के। तो उधर ऐसी बातचीत चल रही थी, उस समय एक पक्षी ऊपर आके उस पहाड़ के ऊपर बैठे और पक्षी ने देखा अरे इतने सारे वानर, कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है, अब मैं भूखा हूं तो भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, इतने सारा भोजन मुझे एक साथ मिल रहा है। तो अंगद शोक करने लगा अरे रे देखो पहले तो हम इतने दुखी हैं, अभी पहले उस महान जटायु की मृत्यु हो गई और फिर वाली की, और अब लगता है कि हम सब की मृत्यु होने वाली है। हम यहाँ सीता देवी को ढूंढने आए और ये पक्षी हम सबको खा जाएगा अभी। तो जैसे ही जटायु का नाम सुना तो उस वो पक्षी कहने लगा कि अरे मेरे भाई जटायु का नाम का उच्चारण सुन के मुझे जो प्रशंसा आप लोगों ने की है उसको सुन के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु चिंतित भी हूँ क्योंकि आपने कहा कि जटायु की मृत्यु हो गई, क्या हो गया जरा बताओ मुझे। तो फिर अंगद ने और हनुमान ने सारी बातें बताई और संपाति को बहुत दुख हुआ। उस पक्षी का नाम था संपाति और संपाति ने कहा देखो मैं उड़ नहीं सकता, मेरे जो पंख हैं वो बिगड़ गए हैं, तो मेरी सहायता करके मुझे जरा नीचे ले आओ। वानर लोग थोड़े संशय करने लगे। पहले तो ये पूछ रहे हैं कि हमको, कह रहे हैं हम ये खा जाएंगे, अभी बोल रहे हैं कि मैं मदद करूंगा, नीचे ले आओ। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये भौतिक जगत ऐसे है, यहां बड़ी समस्या है श्रद्धा की, इसमें श्रद्धा रखें नहीं रखें। तो फिर अंततः संपाति से वो पूछने लगे कि आप कौन हैं और आपका क्या प्रयोजन है यहाँ आके। तो संपाति कहने लगे, मैं जटायु का बड़ा भाई हूं। एक बार हुआ ये कि हम दोनों की बहुत शक्ति थी, जटायु मेरा छोटा भाई है, और हम दोनों ने सोचा कि हम इंद्र के पास जाके युद्ध करेंगे और इंद्र को हराएंगे। तो हम दोनों गए इंद्रलोक, वहां इंद्र को हमने हरा दिया, और हमने सोचा कि इंद्रलोक तक ही क्यों रुके हैं, हमें सूरज तक जाना चाहिए। तो इंद्रलोक से फिर हम सूर्यलोक की ओर चलने लगे, उड़ने लगे। उधर जैसे हम जा रहे थे तो जटायु थकने लगा। उस समय हम दोनों की उम्र कम थी, हम दोनों जवान थे, और गर्मी भी लगने लगी, सूरज की किरणें बहुत उष्ण थीं। तो मैंने मेरे छोटे भाई की रक्षा करने के लिए मेरे पंख आगे किए और उसको ढक लिया, लेकिन इस दौरान सूरज की किरणों से मेरे पंख जल गए और उसकी वजह से मैं और आगे उड़ नहीं पाया और मैं नीचे गिर पड़ा, विंध्य पर्वत के शिखर से टकरा गया और मैं यहीं पे हूं और मैं इधर उधर नहीं जा सकता। तो फिर वानरों ने ये बात सुनी और कहा कि हम लोग सीता देवी को ढूंढ रहे हैं जिसका अपहरण रावण ने किया है, और हमने सुना है कि रावण कहाँ ले गया, हम पता नहीं उसका स्थान कहाँ है पता नहीं, लेकिन रावण ले गया है ये तो निश्चित है। तो संपाति ने कहा, हाँ ऐसे सुना था कि कोई ऐसे एक राजकुमारी है जिसको एक राक्षस उठाकर ले गया और वो राम राम कह रही थी, और उसने अपने कोई गहने जो है ऊपर से नीचे फेंक दिए। तो सारे लोग पूछने लगे कि क्या आपको पता है कहाँ है। हाँ रावण तो लंका में रहता है। लंका में? हाँ लंका तो यहाँ 100 योजन दूर है, समुद्र पार है, समुद्र में आगे 100 योजन। अच्छा तो क्या आप देख सकते हैं? हाँ अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी मेरी दृष्टि 100 योजन तो जाती है। पहले तो मेरी दृष्टि बहुत तेज थी, तो अब मैं देख सकता हूं 100 योजन दूर, वहां लंका है, और लंका में बहुत सुंदर बगीचे हैं, और एक वाटिका है अशोक वाटिका, अशोक वृक्षों से भरी हुई, वहां पे कई राक्षसी हैं, और उनके बीच में अकेली एक बहुत सुंदर राजकुमारी बैठी है, वही होंगी सीता देवी, वहीं पे हैं। तो फिर आगे, आपको कैसे पता चला कि ये रावण है और ये सीता देवी को ले जा रहा था, कैसे पता चला आपको? तो संपाति ने कहा, वैसे आपको पता है कि मेरे पंख जल गए हैं, तो मैं ज्यादा इधर उधर जा नहीं सकता भोजन के लिए। तो मेरा जो पुत्र है सुपार्श्व, वो एक बार मेरे लिए भोजन लाने के लिए इधर उधर जा रहा था, अचानक उसने देखा कि एक राक्षस जिसका नाम था रावण, वो सीता का अपहरण करके आकाश से जा रहा था। तो सुपार्श्व उसके पास गया और बड़े मीठे शब्दों में रावण ने उसे कहा कि नहीं नहीं रहने दो, और इसलिए सुपार्श्व कुछ कर नहीं पाया क्योंकि रावण ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। तो इसलिए और सुपार्श्व वापस आ गया। वापस आने के बाद मुझे पता चला कि ऐसे हुआ है। उधर ये जानकारी मिलने के बाद वानरों ने संपाति से पूछा कि अब आगे हम कैसे कैसे जाएं, हम क्या करें, किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। संपाति कहने लगे, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां एक ऋषि थे जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था एक बार कि अनेक साल बाद जब यह वानर आएंगे, श्री राम के प्रतिनिधि आएंगे और वो सीता देवी की खोज में रहेंगे और आप उनको सीता देवी की जानकारी देंगे तो आपके पंख फिर से चले आएंगे, नवीन पंख आपको मिल जाएंगे, आपके जले हुए पंख फिर निकल जाएंगे। और जैसे ही संपाति इस बात को याद कर रहे थे, अचानक उनका उनको नवीन शरीर मिल गया और नए पंख आ गए और अनेक सालों तक संपाति उड़ नहीं पा रहे थे, और जब उनको नए पंख मिल गए तो फिर आसमान में उड़ने लगे, उसका आनंद लेने लगे। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने पैर खो बैठता है और अचानक उसे नए पैर आ जाते हैं तो फिर वो भागना उड़ना शुरू कर दे भागना और चलना शुरू कर देता है बड़े आनंद से, तो संपाति इस प्रकार से फिर उड़ के चले गए। उधर सारी वानर सेना ने सोचा कि चलो अभी हम जाते हैं दक्षिण में। वहां महेंद्र पर्वत तक गए दक्षिण में और फिर लंका की ओर देख के सोचने लगे कि अब कैसे समुद्र पार किया जाए। और जैसे सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि जितने भी वानर थे वो सब अपने अपने क्षमता का वर्णन करने लगे, मैं 10 योजन कूद सकता हूँ, मैं 40 योजन, मैं 50 योजन, 60, 70। जाम्बवान ने कहा 90। जाम्बवान तो भालू थे, वानर नहीं थे, बहुत ही वृद्ध थे उस समय, वही जाम्बवान जो कि कृष्ण लीला में भी आते हैं। कृष्ण लीला में उनका क्या महत्व है? जाम्बवती के पिता हैं और जाम्बवती द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की एक रानी हैं, और उस समय कलयुग में वो कह रहे थे कि द्वापर के अंत में कि मैं अब थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं। वैसे तो त्रेता में भी तो वो बूढ़े थे, तो और बूढ़े हो गए थे, फिर भी 28 दिन उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था और युद्ध बराबर का था। तब श्री कृष्ण ने और जाम्बवान ने सोचा था कि ये बराबर की ये स्पर्धा है, और जाम्बवान ने सोचा कि 28, मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी 28 दिन मेरे सामना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, होगा तो ये केवल मेरे भगवान ही होंगे, वही भगवान जिनकी सेवा मैं त्रेता युग में कर रहा था, अभी द्वापर के अंत में ये आए हैं, वही भगवान है ये। और जैसे ही उन्होंने पहचाना तो उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और फिर उनको पता चला कि ये वही भगवान है, श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो जाम्बवान ने कहा कि पहले तो मैं ऐसे सब कर सकता था, वामन देव की प्रदक्षिणा मैंने 3 बार की जबकि उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, और हनुमान की ओर देखकर जाम्बवान ने कहा कि हनुमान तुम निश्चित समुद्र पार कर पाओगे, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है और तुम्हें बचपन में ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, इसकी वजह से तुम भूल गए हो कि तुम्हारी शक्ति कितनी है, तो अब याद करो कि तुम्हारी असाधारण शक्ति है, अवश्य तुम कूद पाओगे। तो हनुमान को अचानक शक्ति आ गई, जब स्मृति आ गई तो शक्ति आ गई, हाँ मैं कर पाऊंगा। और फिर हनुमान ने अपना शरीर बड़ा किया और कहने लगा कि मैं तो आसानी से गरुड़ की प्रदक्षिणा 1000 बार कर सकता हूं जब गरुड़ उड़ते हैं, और गरुड़ की गति मन की गति के बराबर है। गरुड़ जब उड़ते हैं तो बहुत तेजी से उड़ते हैं, तो हनुमान कह रहे हैं जब गरुड़ उड़ रहे हैं तो उनकी प्रदक्षिणा 1000 बार कर सकते हैं। और ऐसे हनुमान ने अपने शक्ति का वर्णन किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, और फिर कहा कि हाँ अब उन्होंने शरीर बड़ा कर दिया और सारे वानरों को उत्साह आ गया। फिर हनुमान तैयार हुए महेंद्र पर्वत से कूदने के लिए, और सारा सुंदर कांड जो है इस घटना के साथ, किष्किंधा कांड जो है वो समाप्त होता है रामायण में। वो बड़े संक्षेप में आपको 2 दिनों में सुनाया है, वैसे विस्तार में पढ़ना है तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सी चीजें बताई हुई हैं इसमें। सुंदर कांड तो केवल हनुमान जी के कार्यकलापों का वर्णन है, किस प्रकार से हनुमान छलांग मारते हैं और छलांग मारते मारते कैसे किन किन असुरों का सामना करना पड़ता है समुद्र में, और फिर लंका में पहुंच के हनुमान क्या करते हैं, और फिर हनुमान जी सीता को मिल लेते हैं। सीता देवी के मिलने के बाद हनुमान जी कहते हैं, मैं अभी आपको ले जाऊंगा, आप तुरंत मेरे साथ आना। तो सीता देवी कहती है, नहीं, मुझे ले जाना है तो राम को ही आना होगा। मैं ऐसा नहीं चाहती कि लंका आते समय मेरे पति के अलावा किसी कोई और मुझे लेकर आया और जाते समय भी मेरे पति के अलावा कोई तीसरा ही आदमी मुझे लेकर जाए। अगर मुझे यहाँ से छोड़ना है तो राम को ही आना होगा यहाँ पर। तो फिर हनुमान ने एक अंगूठा दिया। अंगूठी ये श्री राम ने दी थी हनुमान को, क्योंकि सुग्रीव ने कहा कि इन सब वानरों से में से मुझे श्रद्धा है कि केवल हनुमान जो है वो सफल हो पाएगा, क्योंकि हनुमान की शक्ति ऐसी है। तो उस समय किष्किंधा में श्री रामचंद्र ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी थी और उसमें भगवान का नाम लिखा हुआ था, अंदर राम, और हनुमान से कहा था कि ये अंगूठी दोगे सीता देवी को तो निश्चित पहचान पाएगी और जानेगी कि तुम एक प्रमाणिक व्यक्ति हो, ठीक व्यक्ति हो, नहीं तो संशय करेगी सीता देवी कि तुम सही हो गलत हो, या ये कोई रावण का कोई छल है, कोई षड्यंत्र है, क्या है मुझे फंसाने के लिए। तो ये अंगूठी दे दोगे तो सीता देवी विश्वास करेगी। तो पहुंच के सीता देवी को अंगूठी दे दी, सीता देवी ने पहचान लिया, हनुमान ने अपना परिचय दिया और फिर सीता देवी की दशा देखकर हनुमान को बहुत बुरा लगा और सोचा कि मैं अभी इसी समय आपको ले जाता हूं। कहा, नहीं, श्री राम को आना चाहिए। और फिर श्री राम ने हनुमान से ये भी कहा था कि अगर तुम्हें सीता मिल जाती हैं तो सीता देवी से तीन कोई संदेश ले आना, एक दो या कोई संदेश ले आना, जिससे मैं जान सकूं कि वास्तव में तुम सीता से मिले हो। ऐसी कोई बातें कहने के लिए कहो सीता देवी से जो और कोई नहीं जानता, केवल वो और मैं जानते हैं, जिससे कि मैं जान सकूं कि वास्तव में तुम सीता देवी से मिले हो। तो फिर हनुमान जी ने सारे लंका को तहस नहस कर दिया, जला डाला, और लौटते समय सीता देवी को मिल के आए। सीता देवी ने कहा, श्री राम से कहना कि एक बार एक कौवा था जो इंद्र का पुत्र था, उसने मेरे वक्ष स्थल में चोंच मारी थी। दूसरी बात कि एक लाल रंग के धातु से श्री राम ने श्रृंगार मेरा किया था, और तीसरी बात कि यहां मुझे ले जाने के लिए केवल श्री राम को ही आना होगा और कोई नहीं। ये तीन बातें मेरी ओर से श्री राम को कह देना। तो हनुमान जी ये संदेश लेकर आए थे। जब वापस लंका छोड़कर फिर से छलांग मार के आए तो आसमान में ही हनुमान का चित्र देखा सबने, और चेहरे में क्या था, तो सब वानरों को पता चल गया कि हनुमान ने सीता देवी को ढूंढ लिया है, क्योंकि आसमान में आते आते ही वो अपना नृत्य कर रहे थे और उनके चेहरे पर ऐसे लग रहा था कि हाँ, अभी सीता देवी मिल गई हैं, वो कार्य में सफल हो गए हैं। और फिर वो आए महेंद्र पर्वत में, फिर से लौट के वहां पर आ गए। जैसे आपने देखा होगा जब रॉकेट वगैरह कैसे उठता था, कितनी अग्नि वगैरह होती है, सब जितने भी आसपास के जगह हैं सब जल जाते हैं। तो हनुमान जी भी जब छलांग मारे थे महेंद्र पर्वत से लंका के लिए, तो उस समय जितने भी पेड़ थे आसपास, पहाड़ थे, वो सब उनके साथ उस जोर से उड़ के उनके पीछे आ गए थे। इतना इतना जोर था उनके छलांग में, पेड़ों के पेड़ जो अनेक पेड़ उखड़ गए थे अपने जड़ से और वो सब आसमान में फेंके गए। तो हनुमान जी का जो छलांग था वो कोई साधारण छलांग नहीं है। आजकल कोई 20 फुट कूद लेता है तो उसको कोई स्वर्ण पदक मिल जाता है। और हनुमान जी ने 100 योजन कूद लिया और आसानी से, और जाते जाते भी बहुत कुछ कर लिया अपने यात्रा में भी। तो हनुमान जी वापस आ गए और सारे वानर वहां पर राह देख रहे थे, अरे बताओ बताओ क्या हुआ कैसे हुआ, तो सारा वर्णन हनुमान जी ने कह दिया। तो सारे वानरों के में वहां उत्सव हो गया महेंद्र पर्वत पर, और बड़े आनंद से सब खुशियां मनाने लगे, इधर उधर नाचते कूदते, इधर उधर चलो किष्किंधा जाते हैं, श्री राम बहुत प्रसन्न होंगे। तो इतने जोर से वो अपनी लौट रिटर्न जर्नी कर रहे थे, लौट के आ रहे थे, ये जगह जगह जहां भी वो कुछ देखते पूरा तहस नहस हल्ला गुल्ला कर दिया उन्होंने, सारे पेड़ों के पेड़ को निकाल दिया, सब कहीं से फल निकाल दिए, कहीं कुछ कर दिया। रास्ते में एक जगह था, एक वन था जिसका नाम था मधुवन, और ये मधुवन सुग्रीव की संपत्ति थी, बहुत ही सुंदर था। और वहां एक वानर थे जो वास्तव में रिश्तेदार थे अंगद के, अंगद के दादा के समान थे वो, और उनका नाम था दुर्मुखी। वो वहां के रखवाली करते थे मधुवन की, क्योंकि वहां पे बहुत सारा मधु आदि सब मिलता था, और आपको पता है कि वानरों को मधु तो बहुत अच्छा लगता है और भालुओं को भी। तो वहां पर वो आए, वैसे ही वो खुशी से उन्मत्त थे, साथ साथ उन्होंने देखा यहाँ बहुत सुंदर फल है, मधु है, तो सब इधर उधर मधु खाने पीने लग गए। उधर दुर्मुखी कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, और उनके सिपाहियों को कहा कि रोको इनको। तो सारे वानरों ने सबकी अच्छी पिटाई कर दी, और यहां तक कि अपने जो वहां के रखवाली करते थे अंगद ने स्वयं उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी। और जब हनुमान से कहा गया तो हनुमान ने कहा आगे चलो जो करना है करो, खाओ पियो ऐश करो। तो उस मधुवन में सारे मधुवन को उन्होंने खत्म कर दिया, सारे पेड़ इधर के उधर, वहां महाफिस्ट हो गया सबका, और कोई वहां सब इतना सब हलचल मच गया वहां पर कि वहां के जो रखवाली करने वाले थे वानर वो तो भागते हुए गए किष्किंधा, जितने तेज जितनी जान बची थी उतने जान लेकर वो भागे किष्किंधा सुग्रीव के पास। सुग्रीव सुग्रीव देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा अंगद क्या कर रहा है, ये सब वहां आए हैं, और उन्होंने हलचल मचा दिया, उत्पात कर दिया, सारे मधुवन को नष्ट कर दिया है, और वो केवल मधु ले रहे हैं और फल फूल खा रहे हैं। तो सुग्रीव सोचने लगे कि अंगद हनुमान आदि का इतना साहस केवल तब हो सकता है जब ये अपने कार्य में सफल हुए होंगे, इसलिए ये खुशी से पागल होकर ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो कभी भी इनको इतना साहस नहीं होता। फिर श्री राम लक्ष्मण और अन्यों से चर्चा करने लगे, सब ने हाँ हाँ अवश्य सफलता प्राप्त हुई होगी। तो फिर सुग्रीव ने दधिमुखी, दुर्मुखी नहीं क्षमा कीजिए, दधिमुखी, दधिमुखी से कहा कि कोई बात नहीं, आप क्षमा कर दो उनको, कोई बुरी बात नहीं है, वास्तव में वो सफल हुए होंगे अपने कार्य में, इसलिए मैं उनको बख्शीश दूंगा, पुरस्कार दूंगा। वैसे दधिमुखी सोच रहे थे कि उनको दंड मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया है, लेकिन अभी सुग्रीव कहने लगे कि दंड नहीं पुरस्कार मिलेगा, उनको जो करना है करने दो, जितना मधु पीना है पीने दो। और जब दधिमुखी फिर से पहुंच गए तो देखा कि सारे वानर जो हैं अब शांत हो गए, इतना खा कर पी कर उन्मत्त होकर सब अभी बैठे सो गए हैं। और इस प्रकार से अंगद ने जब देखा कि दधिमुखी लौट के आए हैं तो दधिमुखी ने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप जितना चाहे यहाँ आनंद करो, कोई चिंता नहीं करना, मैं सुग्रीव से हमने बात कर ली है। तो फिर वैसे भी लौटने का समय हो गया था, मेरे ख्याल से ये मधुवन भी यहीं पास में कहीं है, इधर ही ज्यादा दूर नहीं है यहां से। तो फिर हनुमान अंगद आदि सुग्रीव के पास लौट कर आए यहीं पे किष्किंधा में, और श्री राम बड़े प्रसन्न हुए कि बताओ बताओ हनुमान क्या है, क्या देखा तुमने, सीता देवी से मिले थे ना? हाँ हाँ मिले थे, और सारा वर्णन किया सबके सामने हनुमान ने। कई बार वर्णन किया क्योंकि पहले वानरों के सामने किया, सब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ बताओ, और यहां भी वर्णन कई बार कर दिया और सबको बड़ा आनंद आया। और फिर सीता देवी ने अपने सर का एक आभूषण दिया था श्री राम को देने के लिए, ताकि श्री राम विश्वास करें कि हनुमान वास्तव में सीता देवी से मिले हैं। तो वो आभूषण जब श्री राम को दिया तो श्री राम अपने आप को रोक नहीं पाए, भाव विभोर हो गए, और फिर हनुमान को आलिंगन करते हुए कहने लगे कि हे हनुमान, कई तरह के सेवक होते हैं। एक वो सेवक होता है जो उसे कार्य दिया जाता है उससे बढ़कर ही कोई श्रेष्ठ कार्य कर आता है, अपने प्रभु की इच्छा को जानकर। ऐसे कई सेवक होते हैं दूसरे श्रेणी के, जो जितना बताया जाता है उनको उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। और तीसरे तरह के सेवक होते हैं जो बताने पर भी प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत रामायण में स्वयं श्री रामचंद्र कह रहे हैं। वो कहानी तो आप जानते हैं कि गुरु और शिष्य की, जबकि गुरु घोड़े पे बैठे हुए थे, जा रहे थे, गुरु थोड़े बुजुर्ग थे, घोड़े पे बैठे हुए जा रहे थे, तो अचानक कुछ चीज गिर गई। तो गुरु ने शिष्य से पूछा कि अरे देखो ये चीज गिर गई, तुम उठाते क्यों नहीं? गुरु महाराज की जय हो, आपने तो नहीं बताया था, आपके आदेश सारे मैंने नोट कर लिए, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि आपकी थैली गिर जाएगी तो उसको उठाना, इसलिए मैंने नहीं उठाया। आप बोले उठाओ तो मैं जरूर उठाऊंगा। अरे मूर्ख उठाओ, मेरी थैली है ना, तो उठा लो उसको। उठा लिया, अब ठीक है तो लिख लो। हाँ महाराज आपको क्या क्या चाहिए आप लिख लीजिए, आप बताइए मैं लिख लेता हूँ। तो लिख लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे अगर ये सब चीजें गिर जाएंगी तो उठा देना। तो उसके बाद आगे चलते चलते स्वयं कोई रास्ते में अड़चन आ गई और घोड़ा ऊपर ऐसे छलांग मार दिया और गुरु ही नीचे गिर गए। गुरु वो घोड़े से नीचे जमीन पर गिर गया और घोड़ा आगे चलता गया और शिष्य घोड़े के पीछे पीछे चलता गया। और गुरु गुस्सा होकर बोल रहे, अरे मूर्ख कहाँ जा रहे हो, मैं गिरा हूं नीचे, यहां उठ नहीं पा रहा हूं, कहां जा रहे हो? गुरु महाराज आपका नाम तो लिस्ट में नहीं है, इसलिए मैं देखा। आप गुरु महाराज की जय हो, आपके आदेश का पालन होकर ही रहेगा, क्योंकि आपका आदेश नहीं है मैं आपको नहीं उठा रहा हूं। अरे मूर्ख तुम इतना नहीं जानते, अच्छा ठीक है जो भी नीचे गिर वो उठाओगे, ठीक है? तो फिर गुरु महाराज को किसी ने किसी तरह से उठाया, फिर से घोड़े पे बिठा दिया, गुरु महाराज की जय हो, और आगे भेज दिया। अब घोड़े ने बहुत भोजन कर लिया था और भोजन करने के बाद सोचा कि अपने शरीर का वजन थोड़ा कम करना चाहिए। तो जब घोड़े ने अपना काम कर दिया तो शिष्य ने गाड़ी घोड़े को रोक दिया और घोड़े का मल उठा लिया। अरे क्या कर रहे हो? गुरु महाराज की जय हो, आपने कहा था कि जो भी कुछ गिरेगा उसको उठा लेना, तो मैं उठा रहा हूं। तो ऐसे तरह तरह के सेवक होते हैं, तो हमें इस प्रकार का सेवक नहीं होना चाहिए। तो सेवक हो तो हनुमान जैसे होना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी ने उत्तर दिया था कि देखो अच्छा सेवक वो होता है जो अपने प्रभु की इच्छा को अच्छी तरह से जान लेता है, और इसीलिए वो गुरु के बताए हुए या प्रभु के बताए हुए आदेश का पालन तो करता ही है, लेकिन उस इच्छा के अनुसार आगे चल के भी जो आवश्यक है वो भी करता है, और इस प्रकार से अपने प्रभु को अति प्रसन्न करता है। तो हनुमान ऐसे प्रथम श्रेणी के सेवक हैं। हनुमान को इतना ही बताया गया था कि जाके ढूंढ निकालो कि सीता कहां है। जब हनुमान वापस आए थे वानर सेना के पास महेंद्र पर्वत पे, तो सब लोग चर्चा कर रहे थे कि चलो हम निकल पड़ते हैं, समुद्र पार करते हैं सब छलांग मार के, और फिर हम रावण को मार के हम सीता देवी को ले आते हैं। तभी अन्यु ने कहा, नहीं देखो, हमारा आदेश केवल सीता को ढूंढ निकालना है, रावण को मार के सीता देवी को लाना ये हमारा मिशन नहीं है, ये तो स्वयं श्री राम करेंगे। इसलिए बुद्धिमान जो शिष्य होते हैं वो सीमा भी अपनी जानते हैं कि कहां तक अपनी सीमा है, बुद्धि से वो समझ लेते हैं कि क्या आदेश किस प्रकार से पालन करना चाहिए। और फिर हालांकि श्री राम ने केवल ढूंढ निकालने के लिए कहा था, हनुमान जी ने वो आभूषण भी ले लिया, सीता देवी से संदेश भी लाए, खुशखबरी लाई और लंका में उत्पात भी कर दिया। तो इस प्रकार से प्रभु राम बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद अभी सभी लोग विचार करने लगे कि अब आगे क्या किया जाए, कैसे सीता देवी को यहां वापस लाया जाए, हम तो उड़ के जा नहीं सकते। तो फिर किसी ने सुझाव दिया, हमें एक पुल बांधना चाहिए, सेतु बांधना चाहिए। तो फिर ये योजना बनी, हाँ चलो सेतु बांधेंगे। और इस प्रकार से सभी सारे वानर सेना श्री राम और श्री लक्ष्मण के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले, इस उद्देश्य से कि आगे चल के वहां एक सेतु बनाएंगे और उसको उसके ऊपर चल के वो लंका पहुंचेंगे, रावण का वध करेंगे, सीता देवी को बचाकर वापस ले आएंगे। और यहाँ किष्किंधा प्रांत में जो ऐसे पहाड़ हैं, देखिए उन पत्थरों को देख के ऐसे लगता है कि एक के ऊपर एक किसी ने अच्छी तरह से रखे हों, ऐसे नहीं लगता है कि बस यूं ही वो पत्थर पानी से हवा से वो कुछ पिघल गए हैं, ऐसा नहीं है। और आगे चल के फिर क्या हुआ आप तो जानते ही हैं, तो कल भी थोड़ी और कथा आगे बढ़ाएंगे। कल हम हम्पी जाएंगे, हम्पी में अनेक स्थान हैं रामायण से संबंधित और अन्य भी स्थान हैं विजयनगर राज्य से संबंधित, उनको हम देखेंगे और कल के कार्यक्रम की सूचना भी आपको दी जाएगी। श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री किष्किंधा क्षेत्र की जय, गौड़ प्रेमानंदे। तो कोई प्रश्न ये है कि जब कोई किसी असुर का वध भगवान करते हैं तो उसे किस प्रकार की गति प्राप्त होती है, अगर वो निराकार में लीन हो जाते हैं तो फिर उनको सेवा का अवसर नहीं मिलता है, तो कैसे गति किस व्यक्ति को प्राप्त होती है। वास्तव में साधारण तौर से जिन असुरों का वध भगवान करते हैं उनको निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अवसर मिलता है, इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं या कैवल्य केवला मुक्ति, जिसमें आत्मा निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाती है। परंतु ऐसे लीन होने से भगवान की सेवा नहीं की जाती, सेवा भाव से विहीन रह जाता है जीव वहां पर। परंतु कभी कभी विशेष विशेष ऐसे कोई उदाहरण हैं जिनमें हम देखते हैं कि भगवान ने उस असुर का वध किया, लेकिन करने के बाद उस असुर को निराकार ज्योति की प्राप्ति नहीं हुई बल्कि भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। इसमें एक उदाहरण है पूतना का। जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया तो साधारण तौर से पूतना के आत्मा को भी निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहिए था, परंतु पूतना को एक धात्री का स्थान मिला गोलोक वृंदावन में, मतलब एक वृद्ध गोपी का, जो बहुत ही एक विशेष स्थान है, माँ के समान है, माता यशोदा के समान एक स्थान मिला। तो तो आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी कोई इतिहास होता है, कारण होता है। जब भगवान वामन देव के रूप में आए थे तो उनकी बहन थी जिनका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने भगवान का सुंदर रूप वामन देव का देखा, एक बटु बाल ब्रह्मचारी, और इतना सुंदर बच्चा था कि रत्नमाला ने सोचा कि ये मेरे बच्चे के समान है, मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को दूध पिलाऊं। तो एक माँ की भावना उसके मन में थी वामन देव के प्रति। लेकिन जब वामन देव का विराट रूप रत्नमाला ने देख लिया और ये जान लिया कि इस बटु ब्रह्मचारी ने उसके भाई का सारा राज्य छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, तो जो एक माँ की भावना थी वो नष्ट हो गई। और रत्नमाला सोचने लगी कि काश मैं इस बच्चे को विष पिला सकती थी। तो फिर दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गईं। अगले जन्म में रत्नमाला का जन्म पूतना के रूप में हुआ। और जब श्री कृष्ण केवल थोड़े दिन के ही थे, एक महीने के, उस समय पूतना जो कि काम रूपिणी थी, मतलब अपना वेश बदल सकती थी, शरीर बदल सकती थी, रूप बदल सकती थी, तो एक बहुत ही सुंदर युवती के रूप में वहां पर आई ब्रज में, गोकुल में। और सभी ने सोचा कि ये तो एक सुंदर महिला पड़ोस की कोई है और यहाँ श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई है। तो किसी ने कुछ कहा नहीं और वो युवती वहां अंदर चली गई और वहां पे दूध पिलाने लगी बच्चे को, बाल कृष्ण को। कृष्ण ने जब पूतना को देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। बंद करने का उद्देश्य आचार्य बताते हैं कि वो पूतना के सत्य को जानते थे कि ये कौन है, क्योंकि वो तो भगवान है और देखना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी एक माँ के रूप में आई थी पूतना, इसलिए इसको नकारना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने स्वीकार किया और दूध पीना शुरू किया पूतना से। लेकिन दूध ऐसे पिया कि जितने भी अंदर अनर्थ थे उनको खींच निकाला और खींचते खींचते प्राण निकल गया। तो जो दर्द, जो कष्ट हुआ पूतना को, उस समय भीषण कष्ट हुआ और अपने सुंदर युवती का रूप धारण नहीं कर पाई, अपने राक्षसी का स्वरूप प्रकट हो गया। और वो भागते भागते बच्चे को लेकर बाहर मैदान में गई और उनका 8 मील लंबा शरीर पड़ा रहा और प्राण तो निकल गए, लेकिन प्राण के साथ जो अनर्थ थे वो निकल गए। गंदे चीजें जो थी हृदय में कि कृष्ण के प्रति बुरा, मैं कृष्ण को मार डालूंगी, ये सारे विचार खत्म हो गए और क्या रह गया, केवल एक माँ की भावना रह गई। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनको एक धात्री का स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन में एक माँ का स्थान दिया। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघाम से या पाय यद अप्यसाधवी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। श्रीमद् भागवत में उद्धव विदुर जी से कहते हैं कि श्री कृष्ण के अलावा श्री कृष्ण से बढ़कर कौन दयालु हो सकता है। पूतना जैसी असाध्वी जो है, अश्रद्धालु दुष्टा व्यक्ति है, वो जो कृष्ण को मारना चाहती थी, कृष्ण ने ऐसी कृपा की उसके ऊपर कि उसको एक धात्री का या माँ का स्थान मिला, दिला दिया। तो ये है श्री कृष्ण की कृपा। तो हालांकि साधारण तौर से श्री कृष्ण जब वध करते हैं असुरों का, उनको निराकार ज्योति में मिला देते हैं, फिर भी कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि उनको विशेष स्थान अपने गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ जगत में भी देते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, माइक है यहाँ दूसरा।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न है कि ये हनुमान जी, हम बोलते हैं कि शिव जी के, आपने बोला कि शक्ति, तो मतलब मैं जानना चाहता था कि ये जैसे हनुमान जी का वो जीव तत्व हैं और जो शिव जी हैं और जो सदाशिव हैं, सदाशिव हम बोलते हैं कि वो कृष्ण के ही लाइक ही इज एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो और जो रुद्र होते हैं तो वो उनको हम डेमी गॉड बोलते हैं. और जो हनुमान जी हैं तो इन तीनों मतलब क्या 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 एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, कैसे समझ सकते हैं?
शिव जी ना तो जीव तत्व है ना विष्णु तत्व है। शिव जी का अपना ही स्थान है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतोः यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये शंभु हैं जो सदाशिव से आते हैं, ये दही के समान है और श्री कृष्ण दूध के समान है। तो शिव जी और कृष्ण में अंतर दूध और दही का है, एक भी हैं और भिन्न भी हैं। सदाशिव ये विष्णु रूप हैं वैकुंठ के। सदाशिव का एक विस्तार है शंभु, और इस प्रकार से विस्तार करते हैं कि वो भौतिक गुणों का स्पर्श करते हैं। तो जब स्पर्श करते हैं तो दही के समान बन जाते हैं। जिस प्रकार से दूध में आप नींबू का एक बूंद भी डालो तो वो दूध क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। उसी प्रकार से जब भगवान विष्णु एक ऐसा रूप धारण करते हैं जिसमें उनको तीन गुणों का स्पर्श करना पड़ता है, विशेष करके तमोगुण का, तो वो शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं। तो वैसे दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, केवल एक बूंद नींबू का फर्क है, लेकिन वो एक बूंद से देखो कितना परिवर्तन हो जाता है। दोनों का परिणाम जो है शरीर के ऊपर अलग होता है। दूध पीने से एक प्रकार का परिणाम और दही लेने से बिल्कुल उल्टा परिणाम होता है। इसलिए दोनों दूध और दही एक हैं और अलग भी हैं। उसी प्रकार से शिव जी भगवान श्री कृष्ण से एक हैं और भिन्न भी हैं। तो शिव जी के अवतार मतलब ये आवश्यक नहीं है कि वो शिव तत्व हैं, वो जीव तत्व कहलाते हैं। तो हनुमान जी भी ऐसे ही हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। प्रभु रामचंद्र कितने साल यहाँ लीला कर पाए, कोई बता सकते हैं? 11,000 साल, बराबर सही है। प्रभु रामचंद्र ने यहाँ लीला की त्रेता युग में 11,000 सालों तक। बात कहते हैं कि क्रोध का प्रयोग भी भगवान की सेवा में किया जा सकता है, और हनुमान का उदाहरण दिया जाता है। परंतु क्या यह सही है कि लंका को जलाने के बाद हनुमान को पछतावा हुआ बाद में? ऐसे वर्णन आपने पढ़ा है कहीं? हमने तो नहीं पढ़ा है, तो कोई पछतावे की बात नहीं है। हनुमान ने भगवान की सेवा के लिए ही सब किया। ताइए कि प्रभु रामचंद्र ने शिव जी की उपासना क्यों की रामेश्वरम में लंका जाने के पहले? वैसे ये घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। वाल्मीकि रामायण को ही हम प्रामाणिक समझते हैं। जितने भी अन्य रामायण हैं वो वाल्मीकि रामायण से ही आते हैं, परंतु सबसे प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण है। तो इस प्रसंग का वर्णन इस ग्रंथ में नहीं आता। लेकिन अगर श्री राम ने शिव जी की उपासना रामेश्वरम में की भी थी तो फिर भी इसमें कोई दोष नहीं है। पहली बात तो ये है कि श्री रामचंद्र मनुष्य लीला कर रहे हैं। मनुष्य लीला करते हुए वो अपनी ही उपासना नहीं कर सकते, इसलिए वो शिव जी की उपासना कर रहे हैं। दूसरी बात कि वहां पर भगवान और भक्तों का संबंध ही ऐसे होता है कि भगवान अपने भक्तों की उपासना करते हैं, जैसे भक्त भगवान की उपासना करते हैं भगवान भक्तों की उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की आरती उतारी ना द्वारका में। सुदामा तो एक एक ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे, और वो जब द्वारका पहुंचे तो किस प्रकार से ठाट से प्रेम से श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया, अपने शैया पर बिठाया, उनके चरण कमल धोए, अपने हाथों से कर कमलों से धोया और फिर उनकी आरती उतारी और फिर चामर से पंखा देने लगे, उनकी पूजा की, तो क्या इसका मतलब है कि सुदामा भगवान है और कृष्ण भगवान नहीं है? ये तो भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का संबंध है, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो यहां पर भी श्री रामचंद्र क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं वो ऐसा करते हैं, और साथ साथ शिव जी उनके भक्त भी हैं। जैसे परसों हम चर्चा कर रहे थे ना, शिव जी क्या कहते हैं, राम राम रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, कि मेरा मन केवल राम 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 इन शब्दों में मग्न है। बताइए कि रामायण में कितने कांड हैं और उनके नाम का महत्व क्या है? वैसे वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। सबसे पहले है अयोध्या कांड, उसके बाद है बाल कांड, बाल कांड के बाद है अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद है किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड और फिर उत्तर कांड। तो इनका नाम भी काफी सरल, इनके नाम भी सरल ही हैं समझने के लिए। अयोध्या कांड मतलब अयोध्या का वर्णन होता है, दशरथ महाराज का, कैसे अयोध्या की स्थापना हुई, कैसे रामायण लिखा गया, वाल्मीकि मुनि को कैसे दिव्य दृष्टि और कृपा मिली ब्रह्मा जी के द्वारा, और लव कुश को कैसे उन्होंने सिखाया, लव कुश जगह जगह जाके कैसे रामायण का गीत गाने लगे बड़े मधुर स्वरों में, और दशरथ महाराज ने पुत्र काम यज्ञ किया, अनेक यज्ञ किए पुत्र की प्राप्ति के लिए। जब बच्चों का जन्म हुआ, रामचंद्र का जन्म हुआ, तब दशरथ महाराज की उम्र क्या थी? 60,000, सही, 60 नहीं, 60,000। तो ये सारी चीजें और उन यज्ञों का वर्णन इत्यादि अयोध्या कांड में आता है। फिर रामचंद्र जी का जन्म होता है, साथ साथ शत्रुघ्न लक्ष्मण और भरत का भी, तो इनकी बाल लीला और धीरे धीरे से किशोर लीला का वर्णन भी आता है, और फिर कैसे विश्वामित्र उनको ले जाते हैं, कैसे असुरों का वध करते हैं विश्वामित्र मुनि के साथ, फिर आगे चल के कैसे विवाह भी होता है सीता देवी के साथ, और उसके बाद कैकेयी और मंथरा का षड्यंत्र हो जाता है और वनवास में भेजा जाता है श्री कृष्ण श्री रामचंद्र को। फिर अरण्य कांड शुरू होता है, अरण्य मतलब वन जंगल, वो वन में घूमते फिरते हैं, दंडकारण्य में, चित्रकूट में, पंचवटी में, और फिर आगे जाके जब दंडकारण्य से या चित्रकूट से होकर फिर वो किष्किंधा में आते हैं तो किष्किंधा कांड शुरू हो जाता है। वो 4 महीने विशेष करके चातुर्मास के जो कि वो यहाँ बिताते हैं किष्किंधा क्षेत्र में। फिर किष्किंधा कांड समाप्त होता है जब हनुमान लौट के आते हैं और फिर प्रभु रामचंद्र सेना को लेकर निकल पड़ते हैं। उसके बाद युद्ध कांड शुरू होता है लंका में, फिर वो समुद्र के पार सेतु बनाते हैं, वानर सेना श्री राम के साथ जाती है लंका, लंका में भयंकर युद्ध होता है और अंत में रावण का वध हो जाता है और पुष्पक विमान के ऊपर सवार होकर सभी लोग लौट के अयोध्या आते हैं, प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक होता है। तो ये है 6ठा कांड, इसके साथ वास्तव में रामायण समाप्त हो जाता है, परंतु एक 7वां कांड भी है उत्तर कांड, इसमें और कई बातें हैं जो वार्तालाप के समय कई चीजें ऐसे आ जाती हैं जो पहले 6 कांडों में नहीं आ पाई, अलग अलग तरह के इतिहास, जैसे हनुमान जी का इतिहास है, रावण का इतिहास है, तो ऐसी चीजें हम उत्तर कांड में पाते हैं। प्रेम के लक्षण क्या हैं? ये एक प्रश्न है। स्वार्थ प्रेम तो प्रेम नहीं होता ना, वो व्यवसाय होता है। इसलिए नरसिंह देव को प्रहलाद कहते हैं, आप वरदान मांग रहे हैं, आप देर देना चाहते हैं, लेकिन मैं वरदान मांगना नहीं चाहता। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि आपके पास कोई व्यापार करने आ जाऊं, कि मैं आपकी उपासना करूं और आप मुझे कुछ भौतिक चीज देंगे बदले में। तो भगवान के पास जाना है तो निस्वार्थ ढंग से जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई अपने हृदय में अनर्थों को त्याग नहीं पा रहा है, उसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, तो इससे भला कि किसी और के पास जाए इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, भले भगवान कृष्ण के पास आए, लेकिन आए। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है कि चाहे आप सारे भौतिक कामनाओं से मुक्त हों, अकामो वा सर्व कामो वा, यह आपके अंदर समस्त कामनाओं भरी हुई हैं, यह मोक्ष की कामना आप करते हैं, फिर भी यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष श्री कृष्ण की भक्ति तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति कीजिए भगवान श्री कृष्ण की। तो चाहे आपका प्रेम स्वार्थी प्रेम हो, निस्वार्थी प्रेम हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। और भगवान की सेवा करते करते वो स्वार्थपन जो है वो निस्वार्थपन में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु हमारा उद्देश्य तो, हमारी इच्छा तो रहनी चाहिए कि हम निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भले हमारे अंदर इस समय कोई स्वार्थ हो, कोई भौतिक कामनाएं हो, कोई बात नहीं। अगर शुरुआत से ही सभी शुद्ध भक्त होने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर कौन भक्ति कर पाएगा? शुरुआत से तो कोई शुद्ध भक्त नहीं रहते, जब भक्ति शुरू करते हैं तब भक्ति करके धीरे धीरे से शुद्धता हो जाती है। लेकिन कम से कम हमारी इच्छा रहनी चाहिए कि हम इन सारे भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएं। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भक्ति या निस्वार्थ प्रेम का वर्णन इस श्लोक में पाया जाता है कि सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है? परम धर्म। सवे पुंसाम परो धर्मो, तो वो पर धर्म है मनुष्य समाज के लिए, जिससे कि जब भगवान श्री कृष्ण की या हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य उस धर्म का पालन करने से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है हृदय में। यह तो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षजे मतलब भगवान कृष्ण। तो सबसे ऊंचा धर्म वो है जिसका पालन करने से भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति या प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है। और ये प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए? अहैतुकी अप्रतिहता। अहैतुकी मतलब इसमें कोई भौतिक मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई भौतिक कारण नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में अप्रतिहता, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे निस्वार्थ प्रेम से ही आत्मा की संतुष्टि हो सकती है। वास्तव में अगर हमें सुख और आनंद चाहिए तो ऐसे निस्वार्थ ढंग से भगवान कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न है, लेकिन श्री राम ने लव और कुश को दोनों को अंत में राज सिंहासन पर बिठाया और लव कुश दोनों राज्य करने लगे। तो खैर, रामायण में तो और बहुत सारे चीजें हैं, ये तो संक्षेप में हम लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रामायण भी एक विशाल ग्रंथ है और जितना मंथन करेंगे उतना आपको अमृत मिलेगा इस ग्रंथ से। एक आखिरी प्रश्न, बल्कि ऐसे अक्सर देखा जाता था, दशरथ महाराज की भी चार रानियां थीं, क्षत्रियों के लिए कभी कभी ब्राह्मणों के साथ भी ऐसे हुआ करता था, लेकिन श्री रामचंद्र ये एक उदाहरण दिखाना चाहते थे कि क्षत्रिय होते हुए भी वो एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहते थे। और विशेष करके ये कलयुग के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो केवल भगवान कृष्ण की रासलीला के नकल करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते या वानरों की तरह एक पत्थर भी नहीं उठा सकते, इसलिए ये हमारे लिए विशेष करके महत्व रखता है। थोड़ा कीर्तन करेंगे, ठीक है? सूचना है कर।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।